ओम शांति। आप सभी भी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को विशेष थैंक्स, क्योंकि 4:30 बजे से आप बैठे हुए इस सच्ची बट्टी का आनंद ले रहे हैं, और अभी भी आप सभी को जो डायरेक्शन मिला इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसका आपने यथार्थ रीति से पालन किया, इसके लिए आप सभी को विशेष थैंक्स। और आपके चेहरे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आप सचमुच भट्टी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यज्ञ के इतिहास में भट्टी का शुरू से महत्व रहा है। हमारी इन दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की, और उसमें से आप सबको केवल 4 दिन तपस्या करनी है, और वो 14 वर्ष का जो निकला हुआ माखन है, उसका रसा स्वादन, उसकी गहरी अनुभूतियां आप सबको इन 4 दिन के अंदर करनी है। और उस 4 दिन के अंदर करने के लिए बाबा ने विशेष हम सबको ये कहा है कि बच्चे तुम्हें स्वचिंतन करना है, क्योंकि जितना जितना हम स्वचिंतन करते हैं उतना ये आत्मा शक्तिशाली बनती है। स्वचिंतन किसको कहा जाता है तो उसके हम सब अनुभवी हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, उस स्वरूप का चिंतन करते हुए अनुभव करना, न केवल संकल्प चलाना लेकिन यथार्थ स्वरूप की अनुभूति करना, इसको बाबा ने कहा है स्वचिंतन। बाबा जो है, जैसा है, और जिस प्रकार से बाबा ने अपना परिचय दिया है उसके उसी स्वरूप का गहरा अनुभव, यह है स्वचिंतन। कई बार हम अपने बारे में ये सोचते हैं, मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, मैं बहुत अच्छी रीति से आगे नहीं बढ़ सकती हूं, मेरे ऐसे स्वभाव संस्कार हैं, मेरे ऐसे हिसाब किताब हैं, ये ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, तो हम सोचते हैं ये हमारा स्वचिंतन है, मैंने अपने बारे में चिंतन किया। क्या इसको स्वचिंतन कहेंगे? इसको स्वचिंतन कहेंगे? आप दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है ये भी स्वचिंतन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वचिंतन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, स्वचिंतन आत्मा को बल देता है। लेकिन ये जो हमने अपने लिए चिंतन किया, इस चिंतन से आत्मा शक्तिहीन बनती है, हमारे कमजोरी के संस्कार वो मजबूत बनते हैं, तो इसको हम स्वचिंतन नहीं कहेंगे। तो कई बार हम अपने पुरुषार्थ के अंदर ऐसी पुरुषार्थहीन बातों को सोचते सोचते अपनी शक्तियों को क्षीण करते हैं। बाप दादा का हमेशा ये इशारा रहा है, हमारी परम श्रद्धे आदरणीय दादी, जिनको अभी आप सबने सुना, और दादी के चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से हमेशा हमने ये प्रेरणाएं ली कि किस प्रकार से दादी स्वचिंतन करते हुए शुभ चिंतक थी। दूसरों के लिए भी दादी को हमेशा इतना ही चिंतन चलता था कि ये यज्ञ के सभी भाई बहनें एक मत, एक संगठन में अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते हुए आगे बढ़े। दादी के अंदर एक एक के लिए शुभ भावना थी, न केवल भावना थी लेकिन हर प्रकार से दादी हमें वो सहयोग देते हुए आगे बढ़ाती थी। शुभ चिंतन यथार्थ रीति से किसको कहा जाता है तो एक बार अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त मुरली में इस बात को स्पष्ट किया था कि ज्ञान के गुह्य राजों को न केवल संकल्प स्वरूप में परंतु उसकी गहराई में जाते हुए उन ज्ञान रत्नों से खेलते हुए बुद्धि को आनंद की अनुभूति हो, लहरों में लहराने की अनुभूति हो, उसको कहते हैं शुभ चिंतन। ज्ञान के हर यथार्थ राज को, क्योंकि कई बार हम भूल क्या करते हैं, यथार्थ शब्द को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से अमृत वेला हम ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है, हम मेजोरिटी ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेला करते हैं। आप में से जो नियमित अमृत वेला करते हैं हाथ खड़ा करेंगे, मेजोरिटी करते हैं। अब अगर इसमें हम यथार्थ शब्द को ढूंढें, क्या हम यथार्थ रीति से अमृत वेला करते हैं? करते हैं। यथार्थ बाबा ने कहा, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के बाबा से शक्तियों और वरदानों की अनुभूति करना। हम उठते जरूर हैं और उठने के पश्चात बाबा की याद में आकर के भी बैठते हैं, लेकिन मेजोरिटी ब्राह्मण आत्माएं, मेजोरिटी, हमारी स्थिति शक्तिशाली की जगह साधारण हो जाती है। इसलिए बाबा से जो हमें वरदानों की अनुभूति हो, बाबा से जो शक्ति की अनुभूति हो, उसकी मात्रा परसेंटेज में आ जाती है। हम चार्ट में जरूर भरेंगे कि हमने आज अमृत वेला किया, हमारी क्लासरूम में हाजिरी जरूर थी, लेकिन अपने आप को हम चेक करें और पूछें, क्या हम बाबा के पास वतन में थे? बाबा से हमारी रूरिहान हुई? बाबा से हमारी मुलाकात हुई? क्योंकि प्राप्ति का आधार है यथार्थ। कोई भी कार्य जब हम विधि पूर्वक करते हैं, उस विधि पूर्वक किए हुए कार्य से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आलस और अलवेलापन ये भी योग की यथार्थ विधि नहीं है। एक बार मैगजीन के अंदर एक कार्टून था जिसमें ये बताया, दो राजयोगी थे, दोनों राजयोगी अमृत वेले योग का अभ्यास कर रहे थे। एक राजयोगी उठ करके अपने बिस्तर पर बैठा, बैठा जरूर था, लेकिन उसने ऊपर में आलस और अलवेलेपन की छतरी ओढ़ी हुई थी और उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र था। बाबा वरदानों की वर्षा, वो तो अमृत वेले करता है। और दूसरा राजयोगी जो उठ करके एक काग्रचित होकर के बाबा की याद में तल्लीन था, तो उसका जो बुद्धि रूपी पात्र था वो ऐसे खुला हुआ था। तो बाबा जो ऊपर से वरदान दे रहा था, वो सारे वरदान कहां गए? उस बुद्धि रूपी पात्र में आ गए। दूसरा जो राजयोगी, वो भी उठ करके बैठा हुआ था, बाबा की याद में बैठा था, लेकिन उसके ऊपर क्या थी? आलस और अलवेलेपन की छतरी लगी हुई थी। तो ऊपर से जो बाबा से वरदान प्राप्त हुए, वो वरदान कहां गए होंगे? छतरी के ऊपर से साइड में चले गए। तो हम अपने आप को चेक करें कि मैंने अमृत वेला तो किया, लेकिन मेरा बुद्धि रूपी पात्र उसके अंदर वरदानों से उसको भरपूर किया, या उठने के बाद में भी आलस और अलवेलेपन की छतरी हमने अपने पास रखी। आजकल बरसात की सीजन है ना, इसलिए वो छतरी भले अपने पास रखें, लेकिन आलस और अलवेलेपन की छतरी को बाबा को दान दे दें, स्वाहा करें, तो हम शक्तिशाली अमृत वेले में अनुभूति कर सकते हैं। इसको कहेंगे याद की यथार्थ विधि। और जब आपके पास अलवेलापन नहीं है, आत्मिक स्थिति में है, उस अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में है, तो बाबा भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे वतन में बाबा बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। आप चमकीली ड्रेस पहन करके बाबा के पास वतन में पहुंच जाओ। तो जब उस ड्रेस को हमने धारण किया होगा तो बाबा से मिलन मुलाकात में इतना अच्छा अनुभव करते हैं और महसूस होता है कि सचमुच मैं आत्मा बाबा से कुछ प्राप्त करके उठी हूँ। उठने के पश्चात भी आपके चेहरे पर वो प्राप्ति की झलक और फलक दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर कर्म को यथार्थ रीति से करो। तो पहला है अमृत वेले का, दूसरा कर्म आता है मुरली सुनने का। अमृत वेले के पश्चात हम ज्ञान अमृत का पान करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। तो मुरली सुनने में भी हम हमेशा चार्ट में लिखते हैं मुरली सुनी, तो लिखेंगे हाँ जी, हाथ खड़ा करेंगे हाँ जी। लेकिन मुरली सुनते समय जो बाबा ने विधि बताई है कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए परम धाम से आया हूँ, मैं तुम्हारा परम शिक्षक हूँ, तो जब परम शिक्षक हमें पढ़ा रहा है तो हम सुनने वालों की स्थिति कौन सी होनी चाहिए? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझ गॉडली स्टूडेंट के लिए बाबा परम धाम से पढ़ाने के लिए आया है। तो जब मुझे पढ़ाने आया है, उस मुझे शब्द से बाबा की पढ़ाई की हमें वैल्यू होगी। नहीं तो कई बार आप देखो, बहुत जगह में तो जब क्लास कराने के लिए जाती है तब देखते हैं कितनी जगह पर बाबा की मुरली चल रही है और हम बड़े आराम से इतना शांति से बाबा की मुरली सुनते हैं, जो सुनते सुनते सुन हो जाते। एक बार एक क्लास में, बहुत अच्छा क्लास था, लेकिन क्लास के मेजोरिटी स्टूडेंट झोंका खाने वाले थे, तो उन्होंने क्लास कराने के बाद में उन बहन जी को कहा कि बहन जी आपका क्लास बड़ा अच्छा है, क्लास में आते बहुत हैं लेकिन सोते हैं। तो वो बहन जी ने जवाब दिया, भाई जी सोते हैं तो क्या हुआ, आते तो हैं, समझा। तब फिर दादी को याद किया, हमारी दादी चंद्रमणि हमेशा कहती थी, अरे तुम इतना त्याग करके, नींद का त्याग किया, घर से अपनी जो व्यावहारिक लौकिक प्रवृत्ति उसका त्याग किया, ठंडी में चल करके तुम बाबा के घर में पहुंचे हो, तुम आते हो तो सोते क्यों हो? परिवर्तन हो गया ना। ये है हमारे दादियों के आदर्श, ये है हमारी दादियों की यथार्थ विधि सिखाने की रीत। दादियां क्या चाहती हैं? जो बाबा चाहते हैं, कि भाई तुम आते हो तो फिर सोते क्यों हो? और हम क्या कहते हैं? सोए तो क्या हुआ, लेकिन आते तो हैं। अब आप सोचो, अगर आप क्लास में आए, आने के बाद में भी आपकी बुद्धि बाबा के पास नहीं रही है, आपने मुरली को नहीं सुना, उससे फायदा होगा? उसको बाबा शब्द योगी योग में भी अगर इस ढंग से बैठते हैं, मुरली क्लास में भी अगर इस ढंग से बैठते हैं, तो बाबा कौन सा शब्द देता है? बाबा उसको नाम देता है नेमिनाथ। नियम प्रमाण कर्म करने वाले या नियम प्रमाण चलने वाले, उसमें हमें जितनी प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो यथार्थ विधि क्या कहती है? हम गॉडली स्टूडेंट बन करके बैठे, हम सबके हाथ में पेन और डायरी हो। सोचो तो सही, सारे कल्प के अंदर केवल संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं को ये भाग्य प्राप्त होता है जो भगवान डायरेक्ट आकर के शिक्षक बन करके पढ़ाता है। आज लौकिक में भी अगर कोई अच्छे प्रोफेसर से पढ़ते हैं तो बड़े नाच से परिचय देते हैं, मैं फलाने कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं फलाने प्रोफेसर का स्टूडेंट हूँ, कितना उनको नाज होता है। और हमें पढ़ाने वाला कौन है? डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है। लोग इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भगवान भी आकर के कभी पढ़ा सकता है, और हम ब्राह्मण आत्माएं वो हैं जो हर रोज उस पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला दुनिया में कोई मिला? कोई मिला? हर रोज एक पाठ पक्का पढ़ाता है, फिर भी हम रोज रोज बाबा को फरियाद करते, बाबा भूल जाते हैं। हम इतने अच्छे बाबा के बच्चे, बाबा हर रोज हमें याद करता है, और हम बाबा को क्या कहते हैं? बाबा हम आपकी याद घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर भी बाबा क्या कहता है? नहीं आप ही मेरे भविष्य के होने वाले होवनहार देवताएं हो। इतना प्यार से बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है, तो जब बाबा प्यार से पढ़ा रहा है तो हम भी ये परिवर्तन करके जाएंगे कि हमारी ये आंखें हमेशा खुली रहे। बाबा कहता है मैं कल्प में एक ही बार तो अपने बच्चों को देखता हूं, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। अब सतगुरु नजर से निहाल कर रहा है और ये नजरें बंद हो जाए कैसा लगेगा? आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला आंखें बंद करके बैठा रहे, आपको क्या लगेगा? इंसल्ट फील होगी। हम इनडायरेक्ट, ये भी तो हमारे बाबा की एक इंसल्ट है ना, हमने पुकारा, हमारे बुलावे पर बाबा आया है और हम बाबा को रिस्पॉन्ड ना दें, आंख बंद करके बैठे, ये हमारी पढ़ाई की यथार्थ विधि नहीं है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, बाबा मुझे पढ़ा रहा है और मैं पढ़ रहा हूं, हम सबको बाबा की मुरली से नोट करने चाहिए। और बाबा भी कहता है जब बच्चे कांध हिलाते हैं, बच्चे खुशी में डांस करते हैं, तो बाबा को भी मुरली बजाने में मजा आती है। समझा? तो डांस करने वालों के सामने बाबा भी डांस करता है। तो मुरली सुनते समय एक हमारी स्थिति गॉडली स्टूडेंट की, दूसरा बाबा कहता है मुरली की तान पर गोपियां मस्तानी। वो गोप गोपियां कौन है? कौन है? हम हैं, हम हैं। अब आप उन गोप गोपियों की कहानी तो सुनते हैं, एक आंख में सुरमा डाला, एक पांव में चप्पल पहना, मुरली बजी और गोपी दौड़ते दौड़ते पहुंच गई। और जब मुरली बजती थी तो रास करती थी, डांस करती थी। वो गोपी मैं हूं। आप सोचो मुरली की धुन पर ये मन मेरा डांस करता है, वो जो कल्प पहले वाली गोपी का गायन वो मैं। तो ऐसी सच्ची गोपियां जब उस लगन से आप बाबा की मुरली को सुनेंगे, तब इस मुरली से आप स्वचिंतन करते हुए, शुभ चिंतन करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना करके, जो हम सब ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य है कि हम बाप समान संपूर्ण और संपन्न बने, उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी वही गोप गोपियां जो बाबा जिनको याद करता है, ऐसी स्थिति से अपनी इस पढ़ाई से श्रेष्ठ स्थिति बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। एक मिनट साइलेंस करेंगे और फिर आप उठेंगे। सिर्फ एक मिनट के लिए साइलेंस करेंगे, क्योंकि 9 बजे फिर आपको रात्रि दादी जानकी जी का क्लास है, उसमें भी पहुंचना है, भोजन भी करना है।